प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूही खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। अब ना उदासी है ना दर्द यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और आशा करता हूँ कि आप सब इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के द्वारा अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठा रहे हैं और अपनी आशीष दूसरों के साथ में भी बांट रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हैं और पत्र लिखकर अपनी आशीषें हम तक पहुंचाते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। यूपी मथुरा से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें एक जवान भाई ने लिखा था कि वह अपने अध्ययन के दौरान गलत संगति में चला गया और वह 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया, जिसके कारण से परिवार में काफी उलझन आ गई। वह बहुत निराश हो गया। इतना ही नहीं, घर के लोग भी उससे अच्छा वर्ताव नहीं करते थे क्योंकि उसका चाल चलन खराब हो चुका था। उसके पिता उससे बात नहीं करते थे, उसकी माता भी उससे बात नहीं करती थी, जिससे वह भाई बहुत दुखित हुआ और ठान लिया कि इस परिवार में से वह अपने आप को अलग कर लेगा और इतना ही नहीं, वह संसार से भी कहीं दूर चला जाएगा। उसने योजना बनाई और रात के पहर वह अपना रेडियो लेकर खेत में चला गया ताकि कुछ समय तक फिल्मी गीतों को सुनकर मन बहलाए और रात होने पर आत्महत्या कर ले। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वह रेडियो में कांटा घुमा घुमा कर गीत खोज रहा था, उसी समय उसे TWR का यह स्टेशन मिल गया। उसने सोचा यह व्यक्ति क्या बता रहा है, और वह एक क्षण के लिए रुककर सुनने लगा। लेकिन सुनते सुनते उसे अच्छा लगने लगा और उसने इस पूरे कार्यक्रम को सुना। सुनने के बाद उसे कुछ शांति सी महसूस हुई क्योंकि उस दिन बाइबल के पुस्तक लूका से उड़ाव पुत्र की कहानी पर विश्लेषण दिया जा रहा था, जिसने अपना जीवन बुरी संगति में उतार कर घर से बाहर चला गया था। अब वह फिर लौटा और पिता से माफी मांगी तो पिता ने उसे स्वीकार कर लिया। यही बात हमारे भाई को बहुत पसंद आई और वह अपने घर के बारे में सोचने लगा। तब वह वापस घर लौट आया और प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुनने लगा। आज वह एक रेडियो वक्ता के रूप में प्रभु के वचन का प्रचार करता है। प्रभु ने उसके जीवन को मरने से बचा लिया सिर्फ इस कार्यक्रम के द्वारा से। मेरे मित्रों, ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जो अपने जीवन में पाकर हमें लिखते हैं। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही परिवर्तन हुए हैं या आपने किसी प्रकार से इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आशीष पाया है तो हमें पत्र द्वारा अपनी आशीष अवश्य बताएं। अपनी प्रार्थना निवेदन हम तक पहुँचाएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप फोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, मैं समझता हूँ कि इस गवाही के द्वारा भी आपको आशीष मिला है। तो आइए अब हम अपने मुख्य अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, जो इफिसियों की पत्री से लिया गया है, जिसे पौलुस प्रेरित ने लिखा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु हम आपके बीच में जीवितों के बीच जीवित पाए जाते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, हम धन्यवादित हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए, जिसके द्वारा से प्रभु आप हमारे जीवन को बचा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उस भाई के लिए जिसने इस कार्यक्रम को सुना और आत्महत्या से वह बच गया, और वह आज पृथ्वी पर रहकर आपकी सेवा करता है। उसके जीवन में आपने शांति और आनंद प्रदान किया है। हमारी प्रार्थना है इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो निराश हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, पिताजी आप उनके जीवन को स्पर्श करें, अपने वचन से बोले और बातचीत करें, हम सबसे बातचीत करें, ताकि आज का यह समय हम सबके लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए आप मेरे साथ इफिसियों के पत्री उसके एक अध्याय को निकाल लीजिए। पिछले अध्ययन में हमने देखा था एक अध्याय उसके दो पद तक, और जहां पर पौलुस ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि वह एक प्रेरित है और हम सबके लिए उद्धार का पाना अवश्य है, और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त होता है, विश्वास के द्वारा प्राप्त होता है। तो अब हम इफिसियों एक अध्याय के दूसरे मुख्य भाग में आते हैं, जिसका आरंभ एक अति अनुपम पद से होता है। तो आइए आप मेरे साथ इफिसियों की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद को निकालें। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मेरे मित्रों, यहाँ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। हम होठों से उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें आशीष दी है। हमारी आशीष एक उद्घोषणा है, उसकी आशीषें कार्य हैं। हम उसे धन्य कहते हैं, वह हमें आशीषित करता है। आशीषित शब्द में हर्ष और आनंद का विचार है। आज परमेश्वर आनंद मना रहा है क्योंकि उसके पास आपको उद्धार प्रदान करने का मार्ग है और वह आपको आशीष दे सकता है। लिखा है कि उसने हमें आशीष दी है। मैं इससे अधिक सौभाग्य की बात दूसरी नहीं सोच पाता हूँ। जी हाँ, वह उस बात की चर्चा नहीं कर रहा है जो हमें स्वर्ग जाने के बाद मिलेगी। यह इसी समय की आशीषें हैं। मुझसे किसी ने पूछा, आपके पास दूसरे क्रम की आशीष भी है, दूसरी आशीष? मेरे मित्रों, मैं तो सैकड़ों आशीषें प्राप्त कर चुका हूँ, वरन हजारों। उसने हमें आशीष दी है और हजारों की संख्या में, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में। आप देखेंगे कि यहाँ स्थान वास्तव में मूल लेख में नहीं है। अतः कहने का अर्थ है कि आत्मिक आशीषें जो स्वर्ग में है, मैं नहीं जानता कि यह स्वर्गीय क्या है और कहाँ है, परंतु यह जानता हूँ कि मसीह के साथ है। मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमें यहाँ पर कहा गया है कि ये आशीषें मसीह में है। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमें यहाँ सावधान रहना है? यहाँ यह नहीं लिखा है कि ये आशीषें मसीह के साथ हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं। इसे आप और मैं मसीह में अवस्थित हैं। मेरे प्रियो, जब कोई कहता है क्या आप स्वर्ग जाएंगे, तब एक सामान्य उत्तर होता है, मैं आशा करता हूँ कि जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो आप पहले ही से मसीह में हैं, और आप यहाँ जो भी हैं उससे अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, परंतु यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप मसीह में हैं। कुछ लोग इसे गलत समझते हैं। मैं एक सभा में इफिसी की पत्री का अध्ययन करवा रहा था। वहां आराधना के पश्चात एक भाई से प्रार्थना करने का निवेदन किया गया। उसने प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम मसीह में स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। वह चूक गया था। जी हाँ, हमें मन के स्वर्गीय स्थान में बैठने का आनंद लेकर बाइबल अध्ययन में नहीं आना चाहिए। सच तो यह है कि आप मसीह में स्वाभाविकता में हैं। चाहे आप नाली में ही पड़े क्यों ना हो, मसीह में अवस्थित प्रत्येक जन उसमें स्वर्गिकता में उपस्थित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उसकी स्तुति करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें आशीष दी है, उसने हमें सब आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया है। इसका समानांतर पुराने नियम की यहोशू की पुस्तक है। वहां हमने देखा था कि परमेश्वर ने इसराइल के वंशजों को कनान देश दिया था। कनान स्वर्ग का चित्रण नहीं है, वह हमारे जैसा ही एक स्थान है जहां पर आज हम रहते हैं। वह स्थान स्वर्ग नहीं है और नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां वैरी रहते थे और उनसे युद्ध करना पड़ता था। युद्ध करना तो सांसारिक रीति है, स्वर्ग में हमें युद्ध नहीं करना होगा। यहां पर आप ध्यान दें, मेरे कहने का मतलब है कि यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि परमेश्वर ने उन्हें कनान दिया, उन्हें केवल उस पर अधिकार करना था। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जिसे हम एक अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहोशू कह सकता था, यदि तूने यह स्थान हमें दे दिया है तो हमें तो बस वहां प्रवेश करके अधिकार करना होगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हमें सब आत्मिक आशीषें दी है, हम मसीह में हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मसीह में क्या करना है या हमें मसीह में क्या प्राप्त है? मसीह हमारे लिए धार्मिकता और पवित्रता बना। मैं अपने बचपन में उद्धार के लिए प्रयास करता था, परंतु मैं सफल नहीं हुआ, और मैंने सीखा कि मसीह मेरी धार्मिकता है। उधार पाने के बाद मैंने अच्छा बनने का प्रयास किया और मैं यहां भी सफल नहीं हुआ। तब मैंने सीखा कि मसीह मेरी पवित्रता है। अतः आप देख सकते हैं कि मुझे मसीह में सब कुछ प्राप्त है, मुझे सब आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं। क्या आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं? मसीह के पास आकर आपका उसमें सब कुछ मिल जाता है। अब आप मुझसे यह न कहें कि आप प्रतीक्षा करेंगे कि पवित्र आत्मा आपको विशेष आशीष दे, जैसे बपतिस्मा। मुझे तो यह सब मसीह में प्राप्त है। मेरे प्रियो, यदि आप कहें कि आपको मसीह में सब कुछ प्राप्त है, तो आप अपने लिए किए गए मसीह के कामों का इनकार करते हैं। जब मैं उसके पास आया तो मुझे सब कुछ मिल गया। इन आशीषों को, जो वास्तव में आपकी आत्मिक संपदा है, उपयोग करने की 2 विधियां हैं, उन्हें थाम ले या उन्हें ना थामे। मैं जो कहना चाहता हूं वह 2 सत्य कथाओं पर या कथाओं द्वारा समझाया जा सकता है। मैंने एक बार समाचार पत्र में एक बड़े उद्योगपति का विज्ञापन पढ़ा, जो एक 50 वर्षीय पुरुष की खोज में था। इस व्यक्ति के नाम पर 20 करोड़ रुपया था, अर्थात 20 करोड़ रुपए का इनाम था। मुझे उस व्यक्ति के लिए रोना आया, क्योंकि 20 करोड़ का मालिक घटिया होटल में कहीं पड़ा था। मुझे आज की परमेश्वर की संतान का ध्यान आया, जो इस संसार के तुल्य मनोरंजन में खोए हुए हैं। वे कल्पना से परे धनवान हैं, परंतु आत्मिक आशीषों में समृद्ध होकर भी वे भिखारी ही हैं। ऐसे ही तो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं। यह एक त्रासदी है। मैंने यह कहानी एक कलीसिया में प्रचार करते समय सुनाई। वहां उपस्थित एक महिला आराधना के बाद आकर मुझसे कहने लगी, क्या आप इस कहानी का अंत जानते हैं? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, वह खोया हुआ मनुष्य अंत में मिल गया था। मैंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसने कहा, नहीं, वह एक दिन मरा हुआ पाया गया था। ऐसी मृत्यु कैसी त्रासदीपूर्ण है। अनेक विश्वासी ऐसे ही जीवन जीते और मरते हैं, जबकि उन्हें स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें प्राप्त हैं। दूसरी कहानी एक अंग्रेज कुलीन मनुष्य की संतान की है। वह गरीबी में वास कर रहा था, उसका निर्वाह नहीं हो पा रहा था। उस कुलीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी खोई हुई संतान की खोज की गई, और जब वह मिल गया तब उन्होंने उसकी वसीयत के विषय में उसे बताया। उसका बड़ा प्रचार किया गया। आप जानते हैं उसने क्या किया? वह तुरंत जाकर एक बहुत महंगा सूट लाया और प्रथम श्रेणी से ठाट के साथ इंग्लैंड लौट गया। आप जानते हैं क्यों? उसे विश्वास था कि वह वसीयत उसकी ही है। उसने उस पर कार्य किया। मेरे मित्रों, आप दो में से एक मार्ग चुन सकते हैं। आप दो नाव पर बैठकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। या तो आप डूब जाएंगे या आप एक नाव से बच जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप संसार में रहते हुए दो प्रकार का जीवन नहीं जी सकते हैं। आप मसीह के हैं तो मसीह के पास आ जाइए, अन्यथा आप जिसके पास जाना चाहते हैं उसके पास चले जाइए जो आपका संसार है। आप अपना मसीही जीवन प्रथम श्रेणी में ही जी सकते हैं या तृतीय श्रेणी में या द्वितीय श्रेणी में। मैं नहीं समझता कि आपको द्वितीय श्रेणी की टिकट लेनी पड़ेगी। आज अनेक विश्वासी द्वितीय, तृतीय और चौथी श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप जान लें, आपको सब आत्मिक आशीषें प्राप्त हैं, आपके सम्मुख सब कुछ उपलब्ध है। जी हाँ, परमेश्वर आपको और मुझे सारी आशीषें देना चाहता है, अर्थात हमें दे दिया है। उसे मुझे और आपको ग्रहण करना है। यह तो ऐसी बात है जैसे कोई व्यक्ति आपके पास में आकर आपको 1 करोड़ का चेक देता है, लेकिन आप उसे लेने से मना करते हैं, आप कतराते हैं। यदि आप उसे लेंगे तो आप निश्चय ही अपनी जरूरतों की पूर्ति करने पाएंगे और उसका आनंद उठाने पाएंगे। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दे दी है। उसने हमें भौतिक आशीषें नहीं दी है, केवल आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में मसीह में है। मेरे मित्रों, आपको ऐसी कोई आत्मिक आशीष प्राप्त नहीं है जो मसीह में आपको नहीं मिली है। वह ऐसा महत्वपूर्ण है। वह हमारा उद्धार करता ही नहीं, आशीष का दाता भी है। हमें उसे थामने और परमेश्वर की संतान का सा जीवन जीने की कैसी महान और गहन आवश्यकता है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग में आते हैं। पिता परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाया है। आज आप नक्शे के बिना घर नहीं बना सकते। परमेश्वर का नक्शा क्या है? परमेश्वर ने कलीसिया का नक्शा बनाने में क्या किया है? यहाँ लिखा है कि उसने 3 काम किए हैं। पहला, उसने हमें मसीह में चुना। दूसरा, उसने हमें पुत्र होने के लिए पूर्व नियुक्त किया। तीसरा, उसने हमें अपने प्रियों के बीच में स्वीकार्य योग्य बनाया। मित्रों, मैं जानता हूं कि धर्मशास्त्र का यह अंश कठिन है, अतः इसके लिए आप अपनी समझ की कमर कस लें। हम चुनाव और पूर्व नियुक्ति के बारे में देखेंगे। यहाँ 2 भयावह शब्द हैं जिन्हें सुनते ही लोग छिपने का स्थान खोजते हैं, परंतु वे बाइबल के शब्द हैं और उनका अर्थ हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जी हाँ, यह हम सबके लिए बहुत ही सत्य है कि हम इन बातों को समझ जाएं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए एक नक्शा बनाया और हम भी जब घर बनाते हैं तो नक्शा बनाते हैं और उसके अनुसार से घर बनाते हैं ताकि हमारा घर सुंदर हो। परमेश्वर ने हम सबको यह जीवन दिया है ताकि हम इस जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करें और उसके द्वारा हम परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन में इस बात का निर्णय लें और कहें कि प्रभु, मैं आपकी उस प्रथम श्रेणी के ट्रेन से यात्रा करना चाहता हूं। प्रभु, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं जो आशीषें आपने मेरे लिए रखा है। तो मेरे मित्रों, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन पर थोड़ा समय के लिए विचार करें और देखें कि क्या हमने सचमुच में प्रभु के उन आशीषों को प्राप्त किया है जो हमारे सामने है, जो मुझे और आपको देना चाहता है, या आज हम तंगी, बीमारी, परेशानी या किसी प्रकार के तनाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने उन आशीषों को अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आज हमने इस वचन के द्वारा इस बात को जान लिया है कि मसीह में वे सारी आशीषें उपलब्ध हैं। तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम इसे प्राप्त करें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थी वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने हमें रचा है, आपने हमारे जीवन के लिए उन उत्तम और भले आशीषों को दे दिया है ताकि हम उसे प्राप्त करें और इस संसार में रहते हुए उसका आनंद उठाएं और आपको धन्य कहें। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो इस बात को नहीं जानते थे, आज उन्होंने जान लिया है। हमारी विनती है कि उनके जीवन को आप आशीषमय बनाएं, उनके जीवन को प्रभु आप स्पर्श करें, उनके जीवन के हर एक त्रुटियों को, कमी और घटियों को दूर करें ताकि वे अपने जीवन में एक सही निर्णय ले सकें। इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप उनके पास आएं, हाँ पिताजी आप उनकी सहायता करें ताकि उनके जीवन में आप हों और उन आशीषों का वे भी आनंद उठा सकें, हम सब उठा सकें। फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस जीवित और सच्चे वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही सही निर्णय लिए हैं और आशीषों को पाने की इच्छा आपने रखी है। प्रभु आप सबकी सहायता करे एवं आने वाले समय तक सुरक्षित रखे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तू जो आया मेरे जीवन में लेके खुशियां, लेके प्यार। यीशु तू